ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना का पशुपति आर्यघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र और भयरहित तौर पर संपन्न करने के लिए प्रभावकारी सुरक्षा बंदोबस्त करने का निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को किया निर्देश। मुगलिन पोखरा सड़क खंड में आज से 20 दिन दैनिक 4.5 घंटा यातायात रहेगा बंद। और वायु प्रदूषण के कारण भारत के दिल्ली में स्कूलों को किया गया बंद। अब समाचार विस्तार से। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना का राजकीय सम्मान के साथ पशुपति आर्यघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर नेपाली सेना की एक इकाई ने दिवंगत ढुंगाना के सम्मान में सलामी दी। ढुंगाना के पार्थिव शरीर पर उनके बेटों ने मुखाग्नि दी थी। पिछले कुछ समय से लीवर संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहे पूर्व सभामुख ढुंगाना का रविवार दोपहर 83 वर्ष की उम्र में पुरानो बानेश्वर स्थित फ्रंटलाइन अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व सभामुख ढुंगाना के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए सभामुख देवराज खिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, उपसभामुख इंदिरा राणा, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा, उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता, सांसद और विभिन्न पेशाकर्मी सहित सर्वसाधारण भी आर्यघाट पहुंचे थे। नेपाल सरकार ने आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया था। साथ ही उनके योगदान का सम्मान करते हुए सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी भी दी थी। नेपाली कांग्रेस ने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना के निधन पर आज और कल दो दिनों के लिए पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में झंडा को आधा झुकाने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की आज हुई आपातकालीन बैठक ने कल मार्गशीर्ष 4 गते मंगलवार केंद्रीय कार्यालय बंद रखने और स्वर्गारोहण के 13वें दिन में केंद्र में शोक सभा आयोजित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय ने दी। निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय तह के उपनिर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने के लिए प्रभावकारी सुरक्षा बंदोबस्त करने का गृह मंत्रालय को निर्देश किया है। निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा के संयोजकत्व में उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति की बैठक में स्थानीय उप निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू कर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश किया गया है। आयोग ने सार्वजनिक परिवहन का संचालन एवं प्रबंधन करने का निर्देश किया है। साथ ही मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को मतदान केन्द्र तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध का निर्देश किया। इसी मार्गशीर्ष 5 से मतगणना कार्य संपन्न न होने तक उप निर्वाचन में होने वाले स्थानीय तहों के भीतर मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवन नियंत्रण और संबंधित स्थानीय तह से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग में सार्वजनिक यातायात आवागमन की उपयुक्त व्यवस्था करने का आयोग ने निर्देश किया है। साथ ही संबंधित स्थानीय तहों से मतदाताओं के सहज आवागमन के लिए सार्वजनिक यातायात संचालन का प्रबंध करने का भी आयोग ने आग्रह किया है। सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रतिजैविक दवाओं का समुचित प्रयोग करने का आग्रह किया है। आज विश्व प्रतिजैविक प्रतिरोध सचेतना सप्ताह 2024 के अवसर पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पोडिल, वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी और कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने संयुक्त रूप में शुभकामना देते हुए ऐसा आग्रह किया। बता दें कि आज से मार्गशीर्ष 9 गति तक प्रतिजैविक प्रतिरोध समझें समझाएं आज से ही रोकथाम में जुटें के नारे के साथ विभिन्न कार्यक्रम सहित विश्व प्रतिजैविक सचेतना सप्ताह नेपाल में भी मनाया जा रहा है। मुगलिन पोखरा सड़क योजना अंतर्गत तनहो खंड के छिरकन देवराली खंड आज रात 11 बजे से 20 दिन दैनिक 4.5 घंटे बंद रहेगा। पहले चरण में आज रात 11 बजे से 1 बजे तक और दूसरे चरण में रात 1.30 बजे से सुबह 4 बजे तक सड़क पूरी तरह बंद रहेगी। जिला प्रहरी कार्यालय तनहो ने आज एक सूचना जारी करते हुए लंबे समय तक सड़क बंद रहने के जिक्र के साथ वैकल्पिक सड़क का प्रयोग करने का चालकों और वाहन मालिकों से अनुरोध भी किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लिए साझेदारी के साथ आगे बढ़ने का नेपाल ने बांग्लादेश से आग्रह किया है। अजरबैजान के बाकू में जारी जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि पक्षीय राष्ट्रों के सम्मेलन COP29 में भाग लेने के लिए अजरबैजान पहुंचे वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाहिद ठकुरी और बांग्लादेश के पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन और जलस्रोत मंत्री सैयदा रिजवाना हसन के बीच आज हुई द्विपक्षीय भेंट में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को साझा एजेंडा बनाने की बात पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन वार्ता में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच के सहकार्य को आगे बढ़ाने, प्राविधिक टोली को इसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ने और जल्द ही मंत्री स्तरीय बैठक का समय तय करने का मंत्री शाही ने आह्वान किया। कालीकोट के शुभकालिका गांवपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित रारा गांव में आज करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख DSP टेक बहादुर रावत के मुताबिक बिजली की लाइन मरम्मत करने पोल पर चढ़ने के दौरान करंट लगने से 26 वर्षीय वीरेंद्र चौलागाई की मौत हो गई। संखुआ सभा में अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है। सिलीचौंग गांवपालिका वार्ड नंबर 3 खंगवा नदी के नजदीक तेवा भीर से गिरने से स्थानीय राजन राय की मौत हो गई। DSP दक्ष कुमार बसनेत के अनुसार पहाड़ से गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह मकालू गांवपालिका वार्ड नंबर 2 सेदुआ में एक्सकावेटर दुर्घटनाग्रस्त होने से स्थानीय 30 वर्षीय सुरवीर राय की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अब दिल्ली NCR में 10 और 12वीं क्लास भी बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी के ऑनलाइन क्लास चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब शुक्रवार को अब अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि प्रदूषण के कारण इससे पहले दिल्ली सरकार ने 9वीं क्लास तक ही बंद करने का निर्णय किया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि 10वीं 12वीं को छोड़कर अन्य सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा, 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते, उनकी भी फिजिकल क्लासेस रोक दी जाएं। कोर्ट ने फिर 12वीं तक सारी फिजिकल क्लासेस बंद करने का आदेश दे दिया। उत्तरी गजा के बेइत लाहिया शहर में इसराइली हवाई हमले में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय सिविल डिफेंस एजेंसी ने यह जानकारी दी। AFP ने एजेंसी के हवाले से बताया कि हमले में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना का कहना है कि वह उत्तरी गजा में हमले कर रही है ताकि हमास फिर से इकट्ठा न हो सके। इसराइली हमले के कारण पिछले 5 हफ्ते में 1.25 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और इसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इसराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गजा में करीब 44,000 लोग जान गंवा चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व सभामुख तमन्नाथ ढुंगाना का पशुपति आर्यघाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र और भयरहित तौर पर संपन्न करने के लिए प्रभावकारी सुरक्षा बंदोबस्त करने का निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को किया निर्देश। मुगलिन पोखरा सड़क खंड में आज से 20 दिन दैनिक 4.5 घंटा यातायात रहेगा बंद और वायु प्रदूषण के कारण भारत के दिल्ली में स्कूलों को किया गया बंद। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।